نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال الله تبارك تعالى في المقام الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اسی جگہ ایک جگہ فرمایا وَأَتِيُوا اللَّهَ وَأَتِيُوا الرَّسُولَ اور اسی طرح سے وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. ان تمام حدیث میں اگر آپ نے غور سے سنا تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پانے کا راز مل گیا. سب سے پہلی آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 تھی جس کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اس وقت اللہ بھی تمہیں محبوب رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس آیت میں اللہ سے محبت کی دلیل رسول کی اتباع رکھی. رسول کی اتباع کیسے ہوگی؟ یا ہم رسول کی بات سنیں گے اور اس کو سن کے مانیں گے، یا رسول کو کوئی کام کرتے دیکھیں گے اور ہم بھی انہی کی محبت میں کریں گے، اور یا پھر کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کریں گے جو رسول کا طریقہ ہو. اسی طرح سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یہ آیت قرآن پاک میں 3 سے زائد مقامات پہ، کم از کم 3 میں تو ہے کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کے رسول میں، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ. کسی بھی چیز کو نمونہ بنانا یا رول ماڈل بنانا، اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ آپ اس کو دیکھ سکیں یا آپ اس کو جانتے ہوں. تو اللہ کے نبی کو دیکھنے اور جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کی احادیث. اگر اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہے تو اس کا طریقہ بھی آپ کی حدیث ہے. اس کے بغیر تو ہمارے اور اللہ کے نبی کے بیچ میں بہت سارے پردے ہیں. پھر سورۃ حشر کی آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول جو تمہیں حکم دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے وہ منع کریں اس سے رک جاؤ. اس سے کیا پتہ چلتا رسول کیا دیتے ہیں؟ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ حدیث سے پتہ چلے گا. اور قرآن کی آیتیں تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، نبی نے اس کو پہنچا دیا، لیکن اللہ کے نبی کی احادیث ہم سب کے لیے اس چیز کی دلیل بن جاتی ہیں کہ جو چیزیں آپ نے ہمیں احادیث میں دیں ہم اس کو بھی اسی خوشی کے ساتھ لیں جس خوشی کے ساتھ ہم قرآن پاک کو لیتے ہیں. پھر سورۃ نساء کی آیت 59 میں اطیع اللہ و اطیع الرسول دونوں کو ایک جگہ جوڑ دیا کہ اللہ کی اطاعت بھی کرو اور رسول کا کہا بھی مانو. اور سورۃ نساء 80 میں کہہ دیا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو ان ساری باتوں کو میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھا کہ الحمدللہ ہم سب قرآن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، قرآن پاک کو پڑھتے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس جو اس وقت سن رہے ہیں میرے گمان کے مطابق ان میں سے 95% لوگوں نے بھی قرآن پاک پورا کیا ہوگا، یا کم از کم پورا نہیں کیا تو اس کا ایک بنیادی حصہ پڑھ بھی چکے ہیں اور اس کو جانتے بھی ہیں. آج ہم اس حدیث کی کتاب کو شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے کہ کیوں کریں؟ کیونکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کام کے کرنے کا مقصد معلوم ہونا چاہیے. تو آج جو باتیں آپ لکھیں گے اور نوٹ کریں گے یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے پھر اس کتاب کو پڑھنے کے دوران تسلی کا ذریعہ ہوں گی. کیونکہ بعض دفعہ انسان بہت ہی زیادہ جمع تفریق میں پڑھتا ہے تو کہتا ہے قرآن کے تو ایک لفظ کو پڑھنے کی برکت ہے، اور اس کے ایک ایک لفظ پہ کبھی کبھی فرشتے بھی اترتے ہیں، کبھی سکینت کی بات ہے، حدیث کیوں پڑھیں؟ तो पहली बात यह है कि हदीस पढ़ने का अगर इन सारी आयतों की रोशनी में रखें तो कुरान पे अमल कैसे करना है, अहदीस की रोशनी में करना है। तो पहली बात यह है कि हम हदीस इसलिए पढ़ें कि हम अमल का नुक्ता नोट कर सकें। कुरान पाक की बहुत सारी आयात ऐसी हैं कि जिनको पढ़ने के बाद हमें समझ नहीं आता कि इसमें से हम क्या करें, लेकिन जो ही हम उसमें से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का अमल देखते हैं, आपकी अहदीस को देखते हैं, तो हमें समझ आ जाता है कि इसका मकसद क्या है कि हम आपकी इसके मुताबिक अमल कर सकें। तो पहली वजह क्या है, अहदीस क्यों पढ़ें, ताकि कुरान पर अमल करना आसान हो। मैं इसको यूं कहूंगी जैसे साइंस स्टूडेंट्स, एक उनका चैप्टर होता है, एक इनका पीरियड होता है थ्योरी का और एक होता है उनका प्रैक्टिकल का। कितना कुछ भी किताबों में पढ़ लें, लेकिन जो बात लेबोरेटरी में जाकर समझ आती है और अगर थोड़ा बहुत एसिड हाथ पे गिर भी जाए तो फिर वो बात भूलती भी कभी नहीं। तो आप कह सकते हैं कि कुरान के इल्म को अपनी अमली जिंदगी में लाने के लिए हम हदीस को पढ़ेंगे। दूसरी बात आप देखिए कि आज के दौर के जो बहुत सारे फितने हैं उनमें एक फितना इनकार हदीस का है। आज लोग कुरान को तो चेंज नहीं कर सके चूके, तो हदीस के ऊपर इनकार करने के लिए कैसी कैसी बातें करते हैं। आज के दौर में जिसको आप कह सकते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के बीच में फर्क करने की बातें आम होने लगी। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस पे भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम सबको बता दिया कि वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल के बीच में फर्क करते हैं तो ऐसे लोग हकीकी तौर पर काफिर हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जो इस्लाम की तस्वीर बनती है वो कुरान और हदीस दोनों को मिलाए तो ही बनती है। वो लोग जो इन दोनों को अलग करना चाहें, एक को माने तो दूसरी का इनकार करें, मान लीजिए कि वो सीधे रास्ते से दूर है। और अगर आप मुस्लिम हिस्ट्री देखें तो तारीख इस बात की गवाही देती है कि मुसलमानों में जितने गुमराह फिरके पैदा हुए उनकी गुमराही की वजह क्या थी, कि उन्होंने कुरान को हदीस से या हदीस को कुरान से अलग करना चाहा। ख्वारिज का नाम सुना होगा आपने, खारिजाइस, उनकी गुमराही क्या थी, कहते थे सिर्फ कुरान की बात मानो और हदीस से रूगरदानी करो। मोतजिला का नाम सुना होगा, असला से दीन को छोड़ गए थे जो, इनका कसूर क्या था, उन्होंने कुरानी आयात के बारे में दूर दराज की तावीलात का सहारा लिया और अहदीस से रूगरदानी की, यानी करीब के की दलील को छोड़कर दूर से अपनी अकल के घोड़े दौड़ाए। नतीजा क्या हुआ, गुमराही उनके लिए लिख दी गई और मुद्दतों तक गुमराहियों के अंधेरों में भटकते रहे। तो गोया कि आप कह सकते हैं कि कल के दौर के भटकने वाले हों या आज के दौर के, दोनों में फर्क ज्यादा नहीं है एक बुनियादी फर्क के सिवा, ये मुमासलत है कि दोनों ने हदीस का इनकार किया। आप में से बहुत सारे लोग खुद तो बड़े शौक से ये मजमून पढ़ेंगे ना अभी, लेकिन आप जब किसी के सामने जिक्र करेंगे तो वो कहेंगे क्या जरूरत है, पता नहीं हदीसें ठीक भी होती हैं कि नहीं, पता नहीं किसकी सुनी हुई बातें कहां पे आ गई। नाउसबिल्ला, कल के इनकार हदीस वालों में और आज के इनकार हदीस वालों में एक बुनियादी फर्क है कि कल जिन्होंने हदीस का इनकार किया, वाकई हदीस का तो इनकार करते थे लेकिन उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बस उनका फितना इल्मी फितना था। लेकिन आज के दौर में मसला क्या हो गया है कि आज के लोग मजाक भी उड़ाते हैं। शायद आप तक भी कुछ बातें पहुंचती होंगी और खास तौर पे जब से इंटरनेट की सहूलतें आम हुई और बस एक क्लिक के साथ दूसरी चीजों को दूसरों तक पेश करना आसान है, ऐसी ऐसी बातें मारूफ कर दी गई कि जिससे ऐसे लगता है कि वाकई इस्लाम और खास तौर पर हदीस, नौजबिल्ला सुम नौजबिल्ला, नबी सल्लम की परेशान जहनी का नतीजा थी। कभी कुछ इस तरह की बातें करते हैं और ऐसे लोग फिर अपनी बातें पेश करके ये पेश कर देते हैं कि बस हम अल्लाह के नबी को एक रसूल मानते हैं, दैट्स इट। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको अगर हम आपके सामने रख दें इस वक्त तो फिर शरह सदर बहुत होगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुकामे नबूवत को ना समझना और अल्लाह के नबी के जो हकूक हैं उनसे जहालत और नावाकफियत की वजह से ऐसे लोगों के कुछ अकायद सामने आते हैं। मसलन अब कुछ नाम दूंगी, जाहिर है कि तकलीफ तो होती है, हो सकता है आप में से सुनने वालों में कोई जानने वालों में ये किताबें पढ़ता हो, लेकिन देखिए कि हक के सामने कोई चीज नहीं आती। चंद कोटेशंस आपके सामने रखूंगी रेफरेंस के साथ कि जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से आज हदीस को दरपर्दा अलग किया गया। यानी हम पढ़ते हैं अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत मानो करो। बस लोगों ने इसको लिखा कि अल्लाह और रसूल से मुराद वो मरकज़े मिल्लत है जो दुनिया में खुदाई कानून नाफिज करे। यानी ना अल्लाह की बात कुछ है ना रसूल की है, बस एक मरकज़े मिल्लत की बात है। ये मुकामे हदीस किताब है और उसकी जिल्द नंबर 1 के पेज 64 पे है। फिर इसी तरह ये अकीदा कि बिला समझे कुरान के अल्फाज दोहराने से सवाब होता है, यकसर गैर कुरानी अकीदा है। ये कुरानी फैसले किताब के पेज 103 पे, यानी ये बात हदीस से पता चलती है ना कि कुरान पढ़ने से भी अजर है। वो कहते हैं किधर लिखा है, खामखा की बातें। अब आप देखेंगे कि हर बात के पीछे हदीस का इनकार मौजूद है। फिर इसी तरह तमाम अहादीस तखमीनी और जन्नी है, इसलिए ये दीन नहीं करार पा सकती। किताब है मुकामे हदीस सफा नंबर 63। यानी कहते हैं कि हदीस कुछ नहीं है, सिर्फ गुमान्स है, अटकल है, थॉट्स है ओनली। नमाज खुदा की परस्तिश की रस्म है जो हर मजहब में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है, और पारसियों के यहाँ इसका नाम तक नहीं है। कुरानी फैसले में 27 नंबर। यानी नमाज का जो एक खास तरीका है, सल्लु कमा राई तुमून युसल्ली, इसकी जरूरत ही कोई नहीं है। बस ये आप जिस मजहब के मुताबिक पढ़ लें वो नमाजी होगी। फिर इसी तरह हज एक यात्रा की किस्म है, ये भी रस्म है, इस्लामी माशरे का जुज नहीं। ये भी कुरानी फैसले के पेज 63 पे। यानी हज की कोई जरूरत नहीं, कहीं भी जाके किसी की यात्रा कर लो तो वो उस मजहब के मुताबिक हज होगा। आप नोट करेंगे कि इसमें सारे मजाहिब को मिलाने का एक उनसर दिख रहा है। फिर इसी तरह ये जो हम हर बड़ी ईद के मौके पर हर शहर और हर करिया, हर गली और हर कूचे में बकरे गायें जिबह करते हैं, ये एक रस्म है जो हम में मुतवातर चली आ रही है। कुरानी फैसले आयत पेज नंबर 57। यानी हज को काट के इबादत से रस्म बना दिया। फिर अगली बात तो बहुत ही तकलीफ देने वाली है। अगर मुसलमान मजीद जिल्लत और ख्वारी से बचना चाहता है, आप जरा इस जुमले को अपने जहन में पूरा करें। मेरे सामने तो कुरान की आयत आ रही है, क्या फतू में नू नबी बात दिल किताबी बतक फुरू नबी बात, अल्लाह का फैसला ऑपोजिट है, लेकिन ये लिखते हैं। तो फिर ऐसे लोग यानी जिनको जिल्लत और ख्वारी से निकलना है तो उसे मजहब छोड़ना होगा। ये तुलुए इस्लाम किताब रिसाला है, फरवरी 1952 का एडिशन है। दीन इस जाब्ता जिंदगी का नाम है जिसे कुरान ने मुतय्यन किया, और मजहब इन अकायद और रसूम का नाम है जो हम में मुरविज है। यानी आप देख रहे हैं कि मजहब से मुराद होते लाइफ स्टाइल, तरीका इबादत का, रिचुअल। कहते हैं ये सिर्फ अकायद और रसूम का नाम है। ये इस्लामी निजाम पेज 6026 पे। आप देख सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये ऐसी बातें की हुई हैं कि जो आम तौर पे मुसलमान समझ भी नहीं सकते, और हो सकता है अभी आप में से भी बहुत सारों को ये जुमले समझ ही ना आए हों। लेकिन हम हदीस क्यों पढ़ें, तो फिर दूसरा फायदा लिख लीजिए, हदीस को महफूज करने के लिए। किसी भी चीज को जब हम नहीं जानते ना तो हम उसके दुश्मन होते हैं। अरबी जुबान में इस तरह की कहावतें मारूफ हैं कि इंसान जिस चीज को नहीं जानता उसका दुश्मन होता है। तो हकीकत है कि हदीसों से जितने दूर रहेंगे हदीस के भी दुश्मन होंगे, और साहिबे हदीस के भी करीब नहीं आ सकेंगे। तो गोया के ऐसी चीजें पेश करके लोगों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ह हदीस का इनकार किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में भी इसका इशारा दे दिया था। रिवायत अबू दाऊद की, आपने फरमाया, खबरदार मुझे कुरान मजीद और इस तरह की एक और चीज भी दी गई है, खबरदार करीब है कि एक आसूदा हाल, आसूदा हाल कहते हैं वेल ऑफ, वेल ऑफ यानी बहुत अमीर शख्स, खाता पीता, एक आसूदा हाल आदमी अपनी मसनत पर बैठकर ये कहेगा कि तुम्हें ये कुरान काफी है। यानी हदीस की जरूरत नहीं, बस कुरान ले लो, इसमें जो हलाल है इसे हलाल समझो और इसमें जो हराम है इसे हराम करार दो। खबरदार मैं तुम्हारे लिए पालतू गधों के गोश्त को हराम करता हूँ, इसी तरह कुचली वाले दरिंदे को भी हराम करता हूँ। ये दो क्यों आपने बोले, क्योंकि इनका जिक्र कुरान में नहीं था। तो क्या पता चले इस हदीस से कि आपने अपनी जिंदगी में बता दिया था कि जब लोगों को खूब अच्छा खाना पीना मिलेगा तो वो हदीस का इनकार करेंगे। फिर इसी तरह तिर्मिजी की एक रिवायत में आता है कि बेशक जो चीजें अल्लाह के रसूल ने हराम की हैं वो गोया कि अल्लाह ने हराम की हैं। किताबुल इल्म की ये रिवायत है तिर्मिजी में। क्या पता चला कि जिस तरह कोई बात कुरान से हराम हो सकती है वही चीज हदीस से भी हराम होती है। तो अगली वजह नोट कर लीजिए हदीस पढ़ने की कि हम हलाल और हराम को जान सके। देखिए पता ही नहीं है कि क्या हराम है तो रुकेंगे कैसे। कल वो लोग जो हदीस के इल्म से दूर रहे वो सिर्फ कुरान की चंद बातों को लेकर ये कह देंगे कि ठीक है हमने हदीस पढ़ी नहीं हमें पता ही नहीं था ये हराम है और ये हलाल है। तो फिर अब जैसे मिसाल है या कुचली वाले दरिंदों की बात हुई यानी जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उनके बड़े बड़े दांत होते हैं तो कुरान पूरा पढ़ लीजिए इनके बारे में कहीं जिक्र नहीं तो कोई खाना शुरू कर दे शिकार करे इनका और खाए बाद में कह देगा मैंने तो कुरान में कहीं नहीं पढ़ा। तो उसका जुर्म क्या है कि उसने हदीस का इल्म नहीं हासिल किया। अच्छा इस फितने की इब्तदा हजरत उमर के दौर से ही शुरू हो गई थी। आपने इस फितने को भांप लिया और इसकी रोकथाम के लिए तदबीर बतलाई थी। आपने कहा कि देखो तुम्हारे पास ऐसे लोग आएंगे जो कुरानी शुभहात की आड़ में तुम्हारे साथ झगड़ा करेंगे। इनका हदीस मुवा करो यानी मैच करो क्योंकि अहदीस का इल्म रखने वाले ही किताब अल्लाह की बेहतरीन ताबीर कर सकते हैं। ये सुनन दारमी की रिवायत है जिल्द एक पेज 47। तो गोया के आपको पता था कि लोग आके झगड़ेंगे। और इससे आप नोट कीजिए कि मुनकरीन हदीस बड़ी पुरतकल्लफ जिंदगी गुजारते होंगे खूब पेट भरकर आरास्ता तख्तों और नरम और नाजुक तकियों पर टेक लगाकर अहदीस का इनकार करेंगे। और अगर आज आप देखें तो बिल्कुल ये पेशन गोई हर्फ ब हर्फ साबित होती है। आज जिन नामों के साथ फितना इनकार हदीस है अगर आप उनको करीब से देखें तो आपको इसी किस्म की बातें दिखेंगी। तो लिहाजा हम इन सारे फितनों से अपने आप को बचाने के लिए हदीस सीखेंगे। फिर अगली बात यह है कि हम ये क्यों सीखें क्योंकि इसके सीखने से हमारे दिल में इस चीज़ का यकीन होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान थे। आपकी बशरियत साबित ही आपकी हदीस को पढ़ने से होती है। सीरत पढ़ लें या हदीस पढ़ लें दोनों के मजमून में कोई बहुत फर्क नहीं है। सीरत में वाकयात ज्यादा होते हैं आपके कौल कम होते हैं हालांकि आपकी जिंदगी के वाकयात भी अहदीस हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अल्लाह के नबी के बोले हुए लफ्ज ही हदीस नहीं होते आपके एक्शंस भी हदीस हैं। सीरत में पढ़ते हैं आपकी लाइफ हिस्ट्री ये किया वो किया तो ये आपकी फेली अहदीस बन गई। आप कह सकते हैं कि सीरत भी हदीस ही की एक किस्म है। ठीक है तीन किस्में होती है ना मोटी मोटी बात अगर आप दोबारा समझ लें कौली फेली और तकरीरी। कौली हदीस कौन सी है जो आपने बोल के बयान की। इंशाल्लाह जो किताब हम पढ़ेंगे और आज जो भी किताबें हदीस के नाम से मारूफ हैं हदीस की किताबें उसमें अमूमन अल्लाह के नबी की कौली हदीसें हैं लेकिन बहुत सारी हदीसें फेली भी हैं। इंशाल्लाह आपको सारी इस्तलाहात भी लिखाऊंगी अल्लाह ने चाहा कि क्या फ़र्क है समय तुम्हें और नज़र तुम्हें और हदसना या अखबरना समय ना तो बहुत फर्क होता है दोनों में। इसी तरह दूसरी किस्म होती है फेली। सहाबी ने देखा अल्लाह के नबी को कुछ करते हुए तो बस वो बात आगे बयान कर दी तो वो हदीस हो गई क्योंकि आपने ये किया। और तीसरी सूरत होती है तकरीरी। उर्दू वाली तकरीर नहीं बल्कि कर्र या कुर्रू से खामोश रहना करार पाना ठहर जाना मुस्तकर ये सारे लफ्ज हम जानते हैं कि किसी को कोई काम करते देखा तो अल्लाह के नबी ने उस पर कुछ नहीं कहा अच्छा या बुरा नहीं कहा तो इसका अंत है कि आपकी खामोशी भी कानून बन गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से एक कुरान को खोल के बयान किया कि हकीकत में सूरह नहल की आयत 44 की बात सच है कि वअनज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम और हमने आप पर कुरान उतारा है ताकि आप लोगों के सामने इसे खूब वाजे करें। ये जो खूब वाजे करना है ना ये हदीस है तफसीर है कुरान की। कुरान की सबसे पहली तफसीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। इसी तरह आपको पता है कि हमारे असलाफ कितना इंतहाई रवैया इख्तियार कर लेते थे उस शख्स के साथ कि जिसको हदीस की बात बताई जाए और वो आगे से अपनी मर्जी करे। जैसे एक सहाबी के बारे में आता है کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی لونڈیوں کو یعنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو. تو بیٹے نے کہا ہم تو روکیں گے, اور غالباً میں بھول نہیں رہی تو عمر بن العاص کی یہ بات اپنے بیٹے سے تھی. کہنے لگے او ظالم, میں تجھے حدیث بیان کرتا ہوں اور تو آگے سے اپنی مرضی کرتا ہے, میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا. اور آتا ہے کہ پھر آخری وقت تک انہوں نے ان سے بات نہ کی. تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے بعد انکار کر دینا یہ بڑی محرومی کی بات ہے. اسی طرح ایک بزرگ تھے حضرت مطرف بن شخیر, ان سے ایک شخص نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے قرآن کے سوا کچھ اور مت بیان کریں, یعنی ہم قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں سننا چاہتے. تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم قرآن کی بجائے ہم بھی کوئی اور کتاب نہیں چاہتے, لیکن ہم اس سے کیسے قطع نظر کر سکتے ہیں جو قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. یہ موافقات کتاب میں جلد 4 صفحہ 26 پر موجود ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کو جتنا قرآن پتا تھا اتنا تو کسی اور کو نہیں پتا ہوگا نا, اور اللہ کے نبی نے جو باتیں ہمیں حدیث کی بیان کی وہ بھی تو ہم نے اللہ کے نبی کی زبان سے مانا نا. غور سے سمجھیے گا, قرآن کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی کی زبان سے ہم نے سنا. جو لوگ آج حدیث کو نہیں مانتے پھر وہ قرآن کو بھی نہ مانے, بات سمجھیں. دیکھیے نا کہ اگر اللہ کی کہی ہوئی بات نبی نے ٹھیک پہنچا دی تو پھر اس کی اپنی بات غلط کیسے ہوگی؟ جو حدیث کو نہیں مانتے, مان لیجئے کہ ان کو پھر قرآن کو بھی نہیں ماننا چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم حدیث اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ اسلامی شریعت پر نفاذ پر عمل کرنا آسان ہو. مثال دوں گی آپ کو, قرآن پاک میں آتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما, چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو. اب آپ بتائیے کتنا کاٹو, کب کاٹو, کتنا مال چرانے پہ سزا ہوگی, کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے, اب یہ کہاں سے پتا چلے گا؟ حدیث سے پڑھیں گے ہم. جب ہم اس میں پڑھیں گے ایسے ٹاپکس کے سزاؤں کا اور حد بندی کا جو بات ہے تو اس میں ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی. چلیے سمپل سی مثال جو ہر مسلمان کو چاہیے, دن میں 5 بار اقیم الصلاۃ نماز پڑھو, کب پڑھو, کتنی پڑھو, سنتیں نفل, ایک رکوع 2 سجدے ایک رکعت میں, کس نے کہا؟ 2 رکعت کے بعد بیٹھ جاؤ تشہد میں پھر کھڑے ہو جاؤ, یہ کون بتاتا ہے؟ چلیے آپ کہیں گے نماز تو چھوڑ دیں, زکات لے لیجئے. قرآن پاک میں وآتوا الزکات کا لفظ آتا ہے, کتنے مال پہ دو, کب دو, ہر روز دو, سال بعد دو, کون بتاتا ہے؟ تو گویا کہ پھر حدیث پڑھنے کا ایک فائدہ, شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. حدیث پڑھے بغیر تو ہم نماز اور روزے کے بھی اور زکات کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے. حج کی بات کر لیں, قرآن پاک میں ایک ہی جگہ پہ حج کا ذکر ہے عمومیت کے ساتھ, اشارے آگے موجود ہیں سورہ حج میں بھی, پہلے سورہ بقرہ میں. کیا اس کے طریقے ہیں, کیسے اس کو 7 کو نکلنا, 8 کو نکلنا, 9 کو, 10 کو, کیا کرنا ہے اس کے ریچول, قرآن میں اشارے نہیں ملتے, بس ذکر موجود ہے, طریقہ نہیں موجود. تو گویا کہ پھر قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہم حدیث کو سیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اور برکت ہے, اور وہ کیا ہے کہ حدیث اس لیے بھی پڑھنی ہے کہ حدیث پڑھنے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کے چہرے کو ہرا بھرا رکھے, جس نے میری بات سنی اس کو یاد کیا اور ویسے ہی بیان کر دیا جیسے کہ اس نے سنا تھا. احسا کا لفظ ہے, الف ہا سواد الف حمزہ, گھراؤ کر لینا, احسا. فرمایا اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے, نظر اللہ المرء کے الفاظ آتے ہیں. چہرے کا اطمینان حدیث پڑھنے سے آتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ حدیث پڑھنے کے ساتھ برکت کیسے اترتی ہے؟ ہمارے اسلاف کی یہ سنت رہی کہ جب کبھی کوئی مشکل آتی تھی تو صحیح بخاری کھول کے بیٹھ جاتے تھے, اور ان کا عقیدہ کیا تھا کہ جب بخاری پوری ہو جائے گی تو مشکل بھی ختم ہو جائے گی, اور کئی عرصے تک یہی بات رہی. لیکن آج یہ سنت بھی طریقہ ختم ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ اب اس کو سمجھیے گا. ہم اس کو اس حد تک سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ حدیث پڑھتے ہیں تو ہر ایک حدیث کے بعد دوبارہ اللہ کے نبی کا نام آئے گا نا, तो जब अल्लाह के नबी का नाम आएगा तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पढ़ेंगे। और दुरूद पढ़ने पे हदीस में आता है कि एक बार के दुरूद पढ़ने से 10 रहमतें उतरती हैं, और इससे ज्यादा और कम भी हो सकती हैं। तो जब इतनी रहमतें उतरेंगी तो हदीस पढ़ने वाली जगह पे, और जहाँ हदीस जहाँ पढ़ी जाती है उस जगह पे, और जो पढ़ता है और जो सुनता है, क्या उस पे रहमत नहीं आएगी? पहले दौर में रिवाज था कि जब कश्ती डूबने लगती तो बुखारी खोल के बैठ जाते और फिर पढ़ते जाते। तो गोया कि फिर हमने क्यों पढ़ना? इल्म के लिए, बरकत के लिए, अमल की नीयत के लिए। और आप देखेंगे कि हदीस पढ़ने का रिवाज इतना आम था, सही बुखारी जब हम शुरू करेंगे, आपको पता है कि इमाम बुखारी रहमहुल्ला ने अपनी जिंदगी में ही 90,000 लोगों को खुद पढ़ाई। और एक चीज तो जरूर ही आपको बुखारी पढ़ने पे माइल करेगी, और वो क्या है कि इमाम बुखारी की दुआ है। आपने दुआ की थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह मेरे बाद भी जो लोग इस किताब को पढ़ें तो उनकी दुआएं कबूल करना। और शायद आपने ये बात कभी सुनी है कि नहीं, कि इमाम बुखारी रहमहुल्ला मुस्तजाबु दावात थे, यानी उन लोगों में से थे जिनकी दुआएं कबूल होती हैं। तो आज हम हदीस इसलिए पढ़ेंगे, अगली वजह लिख लें, कि इस किताब को पाइल अप करने वाले की दुआओं में शामिल हो सके। जैसे आपको पता है कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक दुआ आती है, बहुत ही खूबसूरत है। खुलासा बताऊंगी, मौजू से हट ना जाए, सिर्फ इतनी बात है कि उनकी माँ जब मुसलमान नहीं थी तो वो बहुत परेशान रहते थे, फिर उसके बाद वो मुसलमान हुई और खुशी का इजहार इन्होंने किया। तो उस वक्त उन्होंने एक दुआ भी की थी कि अल्लाह मैं उनके लिए भी बख्शिश की दुआ करता हूँ कि जो मुझसे और मेरी माँ से मोहब्बत करें। कुछ इस किस्म का मजमून बनता है, यानी आज अगर अबू हुरैरा से कोई मोहब्बत करता है तो वो उस दुआ का शरीक हो जाता है। बात वाज़े? तो हम इमाम बुखारी की दुआएं लेने के लिए भी ये किताब पढ़ेंगे। फिर इस तरह आप देखिए कि एक और चीज जो हम सबको इसको पढ़ते वक्त नजर में रख लेनी चाहिए कि इस्लाम का मिजाज सुनने का रहा है। सहाबा कराम ने कुरान पाक सुनकर याद रखा और हिफ्स होता गया। हदीस के बारे में क्या मिजाज है, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। हदीस सुनी भी जाती है और याद भी की जाती है, जैसा कि आपको जिक्र किया पिछली नशिस्तों में कि इमाम बुखारी ने 4 लाख हदीसें याद की और उसमें से फिर अखज करके अपनी किताब लिखी। लेकिन हदीस की तिलावत नहीं होती, क्योंकि हदीस और कुरान में फर्क क्या है कि हदीस कुरान को कहते हैं वही मतलूफ, मीम ता लाम व, मतलूफ कहते हैं वो चीज जिसकी तिलावत की जा सके, और हदीस को कहते हैं वही गैर मतलूफ, वो वही जिसकी तिलावत नहीं की जाएगी। जैसे हम कुरान को एक खास टोन के साथ पढ़ते हैं ना, हदीस को वैसे पढ़ने का अजर तो है, याद भी करने का अजर है, लेकिन एज अ तिलावत इसको करना ये साबित नहीं है। लेकिन यह है कि हम इसको पढ़ने के बाद फिर इंशाल्लाह जब अपने हाफ़ज़े में रखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर आती हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक और वजह भी है हदीस पढ़ने की, कि हदीस को पढ़ने के बाद पढ़ने से हम सहाबा कराम के नक्शे कदम पर चल पड़ते हैं, क्योंकि सहाबा की आदत थी अल्लाह के नबी की इत्तबा करते, आपकी बात सुनते, उसको याद करते और उस पर फिर अमल भी करते। ऐसे ऐसे वाकयात मौजूद हैं सहाबा की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और आपकी बात को सुनकर मानने के अकल दंग रह जाती है। मारूफ वाक्य आपने सुना होगा अब्दुल्ला बिन उमर का, अपने गुलाम नाफे के साथ एक जगह से जा रहे थे सफर में, एक जगह से गुजर रहे थे, एक खास मुकाम पे अपनी सवारी से उतरे और इस तरह बैठ गए जैसे कोई कजाए हाजत के लिए बैठता है, और फिर उठ के दोबारा सफर शुरू कर दिया। गुलाम ने कहा कि मैंने देखा कि आपको हाजत तो नहीं थी, यानी आप फारिग तो हुए नहीं, बस आपने एक पोज ऐसा दिया और उठ के चले गए। तो उस पर उन्होंने फरमाया कि मैं एक बार नबी सल्लम के साथ इसी रास्ते से गुजरा था, ठीक इस जगह पे अल्लाह के नबी अपनी जरूरत से फारिग हुए थे, तो मैंने आज सोचा कि मैं इस सुन्नत से महरूम ना रहूं और मैं आपकी मोहब्बत में इस तरह बैठ के उठा। ये देखिए सहाबा के अल्लाह के नबी के साथ मामले थे। तो जब हम भी हदीस पढ़ेंगे तो हमारे दिल में मोहब्बत होगी اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو لے کے چلیں گے. پھر ایک اور وجہ بھی حدیث کے علم کو لینے کی, اور وہ کیا ہے کہ جب ہم حدیث پڑھیں گے, اس کا تذکرہ اپنے گھروں میں کریں گے, تو یہ علم زندہ رہے گا. آپ کہتے ہیں کہ ابھی ہسٹری ابھی ہم زیادہ نہیں پڑھ رہے, کیونکہ ابھی تو ہم صرف ایک مختصر طور پہ حدیث کی بک شروع کر رہے ہیں نا, اس کے اوپر چلیں گے. لیکن جب کبھی ہم علوم الحدیث پڑھیں گے تو حیران ہوں گے آپ بھی, کیا لمبا چوڑا اس کے اندر علم کا خزانہ ہوتا ہے. لیکن ابھی ہم اتنی بات سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے وہ جو معروف حدیث میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات کو سنا, اسے یاد رکھا, پھر اسے بالکل آگے پہنچا دیا ایسے ہی. کیونکہ جن لوگوں کو بات پہنچائی جاتی ہے ان میں سے بہت سے براہ راست سننے والوں سے بھی زیادہ یاد رکھنے والے ہیں. تو یہ علم کا ورثہ ہم نے اپنی نسلوں کو دے کر جانا ہے, اور اس کے لیے آج تک دیکھیں یہ لفظی طور پہ کام رہا. تھوڑی سی بات کر لوں اس بارے میں بھی کہ جیسے قرآن کی ڈفرینٹ فیزز گزرے ہیں, پہلے بالکل یاد کرتے تھے, پھر ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا. تو حدیث کے لیے کیا تھا؟ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ حفظ اور سما تھا, صحابہ سنتے اور اس کو یاد کر لیتے تھے. ٹھیک ہے, آپ کی زندگی میں تو کیا تھا, بلکہ شروع سے شروع کرتے ہیں, حدیث کیسے محفوظ ہوئی. اب اس حصے کا ٹاپک کیا ہمارا, حدیث کیسے محفوظ ہوئی. تو سب سے پہلی بات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے صحابہ بھی وہی کرتے تھے, تو پھر وہ چیز تو کبھی بھولے گی بھی نہیں. ٹھیک ہے, دوسرا کیا تھا, بات کو سنتے اور یاد کر لیتے. ٹھیک ہے, یہ چلتا رہا علم. حدیثیں اس طرح سے پہلے دور کے لوگ یاد کیا کرتے تھے جیسے آج ہم دعائیں یاد کرتے ہیں اور قرآن کی آیتیں یاد کرتے ہیں. آج جیسے قرآن کے حافظ ہیں ایسے حدیث کے حافظ تھے. ہماری تاریخ میں ایسے لوگ مجھے ہمیں ملتے ہیں, صحابہ اکرام بھی کرتے تھے, اور اللہ کے نبی کی یہ دعا لینے کے لیے بھی بہت سارے لوگ یاد کرتے تھے. پھر تیسری صورت حدیث کی حفاظت کی کیا تھی, کہ اس کو لکھا گیا, کتابت اور تحریر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حکم سے ایسا ہوا. ہوا یہ تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ ابو شاہ کو میرا خط لکھ دو. اسی طرح رسول اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بطور خاص کتابت حدیث کی اجازت دی. کس کو دی حدیث کی اجازت؟ عبداللہ بن عمر کو. تو گویا کہ اللہ کے نبی نے خود حکم دیا تھا کہ حدیث کو لکھا جائے. ٹھیک ہے, اور آج تک یہ کام جاری ہے. اگر آپ کتابت حدیث کو بھی تھوڑا سا دیکھیں نا, تو تین ادوار اس میں گزرے ہیں. سب سے پہلا دور تھا دور رسالت اور دور صحابہ. اس میں حدیث کا بہت سارا تحریری سرمایہ وجود میں آ چکا تھا, ریٹن موجود تھی. یہ باتیں آپ سن کر ان لوگوں کو خاموش کرا سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی کے دور میں تو حدیث لکھی بھی نہیں تھی, تو یہ محفوظ کیسے رہ سکتی ہے. اور نعوذ باللہ تم ایک بندے کی بات کو بس لے کر اور آگے سے آگے چل رہے ہو, تو سمجھ لیجئے کہ یہ بات لکھی ہوئی تب بھی تھی اور موجود تھی اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے, پھر دوسرا دور تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا. انہوں نے اپنے دور خلافت میں زبانی اور تحریری احادیث کو جمع کرنے کا حکم محمد بن مسلم ابن شہاب زہری کو دیا, جو اپنے وقت کے بہت بڑے حافظ حدیث تھے. یہ دوسرا فیز تھا, اس دور میں بھی بہت کام ہوا. پھر اس کے بعد تیسرا دور ہے, چوتھی صدی کے خاتمے تک. اس دور میں باقاعدہ لکھنا شروع ہوا. آپ نے مسند کا نام سنا ہوگا, مسانید, جیسے مسند کا نام سنا ہوگا, مسند عائشہ, مسند امام احمد, یہ ان کے دور میں شروع ہوا تھا. محدثین کرام صحیح اور ضعیف روایات کو بلا امتیاز جمع کرتے تھے, یہ شروع کی بات ہے. لیکن پھر سلطان المحدثین کون تھے؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری, جن کی کتاب انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں, بلکہ کتاب شروع ہو گئی ہے اگر آپ دیکھیں تو. انہوں نے سب سے پہلے یہ کتاب لکھی جو صحت کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی تھی, اور پھر ان کے خاص شاگرد امام مسلم بن حجاج نے بھی صحیح مسلم ترتیب دی, اور اس کے بعد پھر وہ سنن لکھی گئیں جن کو سنن عربہ کہتے ہیں. تو صحیح بخاری جو اس وقت ہم پڑھنے والے ہیں, تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ پورے یقین کے ساتھ اس کو لیں. دیکھیے, جو کتاب امام بخاری نے لکھی تھی نا, وہ تو تھی وہی جس کا تعارف آپ کو پیچھے دے چکی ہوں کہ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ کی بسنت و ایامی ہی. ٹھیک ہے, اب اس کتاب میں کیا تھا, بہت تفصیلات تھی. आज के दौर में भी वो 7 से लेकर 9 जिल्दों में भी छपी हुई है। इमाम बुखारी ने चूंकि मेयार बहुत कड़ा रखा था, तो एक बात आपको कई मुख्तलिफ रास्तों से मिली तो आपने उन सब को लिख दिया, ये भी बड़ी बात होती है। देखिए ऐसे ही कि जैसे आप कहते हैं मैंने एक बात सुनी, बहुत सारों से सुनी, नहीं, इमाम बुखारी ने वो बात जिस जिस से लिख सुनी होती थी उसकी पूरी हदीस दोबारा बयान करते थे। तो इमाम बुखारी की जो किताब थी जब उन्होंने लिखी थी तो उस वक्त बुनियादी मकासद यही थे कि सही हदीसों को जमा किया जाए, जोफ ना हो, कोई कमजोर बात ना हो। फिर इसी तरह इमाम बुखारी ने किताब में से मसाइल और अहकाम अखज किए थे, बहुत सारे फिकी अहकाम भी हमें सही बुखारी से मिलते हैं और इमाम बुखारी की फकाहत पे लोग हैरान है कि ये कैसे लिख लेते थे। फिर इसी तरह आपने बहुत सारे दलाइल जब जमा किए और उसमें से खुद से भी मसले अखज किए थे, लेकिन अब वो किताब इतनी बड़ी, इतनी भारी भरकम थी कि आम पब्लिक के बस की रोक नहीं था किसको समझे। ये ऐसी है कि जैसे बहुत पढ़े लिखे लोगों की बातें भी पढ़े लिखों को ही समझ आती हैं। गाँव का शख्स किसी आलिम जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल जुबान बोले उसकी बात नहीं समझ पाते। तो इमाम बुखारी की जो किताब थी उसमें खूबियां तो बहुत सारी थी, मसलन उनके जो टॉपिक्स हैं उनके जो अबवाब थे उसका तर्जुमा भी साथ था, यानी टॉपिक है उसका भी नीचे ट्रांसलेशन है। फिर उसमें कुछ ऐसी रिवायात थी जिसको सुलासियात कहते हैं, यानी उनके और नबी सल्लम के बीच में सिर्फ 3 रावी थे। फिर इसी तरह कुछ और चीजें थी। वक्त के साथ अल्लाह ताला ने लोगों को तौफीक दी कि उन्होंने इमाम बुखारी रहमहुल्ला की लिखी हुई किताब को इस तरह से रीसेट किया कि उसमें से तकरार निकाल दी, एक हदीस जो 6-7 जगह पे है उसको अलग कर दिया और इस तरह से उसको पेश किया कि आम लोगों के लिए वो बात आसान हो जाए। मसलन इस वक्त जो किताब हम पढ़ेंगे ये किताब दारुसलाम पब्लिकेशन की छपी हुई किताब है, थोड़ा सा इसका भी तारुफ जरूरी है क्योंकि सही बुखारी की ये तलहीस है। तलहीस किसको कहते हैं? खुलासा। इस वक्त जो किताब हमारे हाथ में इसका नाम है अल तजरीदुस सरीखुल अहादीस अल जामे असही, जिसको हम आसान लफ्जों में कह देते हैं मुख्तसर सही बुखारी। इस किताब को जमा करने वाले जो राइटर है उनका नाम है इमाम अबुल अब्बास जैनुद्दीन अहमद बिन अब्दुल्ला अज़ुबैदी रहमहुल्ला। हमें तो नाम भी नहीं याद रहते हैं। ये कब हुई क्या हुआ थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको बात समझनी और भी अच्छी लगेगी। जैसा कि जिक्र किया कि इमाम बुखारी की किताब में बहुत कुछ था और ये चीज़ आम लोगों की राय, आम लोगों के हाथ में आनी ज़रा मुश्किल थी, तो अबुल अब्बास जैनुद्दीन अहमद बिन अब्दुल लतीफ़ अशुरजी अज़बीदी, ये यमन के शहर में रहने वाले थे। यमन के शहर जबीद के करीब शरजा के मुकाम पर जुमतुल मुबारक की रात 12 रमजान, अब अगला सन लिखना है मैं बस, बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए, लेकिन फर्क समझिएगा कि कितने साल बाद ये लिखी गई, फिर आप फर्क कर सकेंगे। 12 रमजान 812 हिजरी, 812 हिजरी, जो कि अगर ईसवी सालों के मुताबिक कर लें तो 1410 को पैदा हुए, 1410 ईस्वी में पैदा हुए, आज कौन सा 2014। तो आप देखेंगे कि जो किताब इस वक्त हम पढ़ने वाले हैं इसको लिखे हुए भी इस वक्त 600 साल से शायद गुजर गया, ये बात बतानी थी आपको। इस वक्त के बड़े बड़े उलमा से इन्होंने इल्म हासिल किया, फन हदीस पर इनको खूब दस्तरस हासिल थी, अपने वक्त के मुहद्दिस भी थे और माहिर अदब भी थे और यमन की रियासतों में बहुत अरसा तक दरस हदीस दिया। तकरीबन 81 यानी 80 ईयर्स की उम्र में शहर जबीत में इंतकाल फरमाया 893 हिजरी में, ठीक है, 1488 बना ईस्वी में तो ये दुनिया से चले गए। और कहते हैं कि शहर जबीद की जरखेज जमीन जो है उसने बहुत सारे उलमा को जन्म दिया और ये शहर मामून के दौर में बैरूनी आफतों की नजर हो गया। इन्होंने इसके अलावा और भी किताबें लिखी, लेकिन इस किताब में जो चीज इन्होंने बहुत ही खूबसूरत की वो क्या किया कि बहुत सारे चैप्टर्स खत्म कर दिए, अहादीस की जो तकरार थी उसको खत्म कर दिया, और उसके अंदर से फिर इन्होंने बात को लेना इस तरह से आसान कर दिया कि हर बंदे के लिए ये आसान हो गई। चलें, ये तो अरबी में लिखी गई थी ना, अब हम तो पढ़ेंगे उर्दू, तो उर्दू तर्जमा भी अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो था वो किया गया। कब किया गया, कैसे किया गया? उर्दू तर्जमा जिन्होंने किया उनका नाम है शेहुल हदीस अबू मोहम्मद हाफिज अब्दुस्सत्तार हम्माद हफिजहुल्ला, और उस तर्जमे को फिर दोहराया भी गया, जिसको आप कह सकते हैं रीचेकिंग जिन्होंने की उनका नाम है शेहुल हदीस हाफिज अब्दुल अजीज अलवी। बहुत मुश्किल लग रहा है ना आज का सेशन, क्या इतने नाम याद करें, लिखा ही नहीं जा रहा, नोट्स भी कैसे लें, कोई जरूरत नहीं है नोट्स लेने की, ये सारी बातें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन ये देखिए कितने लोगों की कोशिशें मिलती हैं तो फिर ये किताब हमारे हाथ में पहुंचती है। इसकी बात देखिए किस तरह से लोग इल्म के लिए जान लगाते, माएं कुर्बानियां देती, बच्चों को अपने से दूर रखती, फिर उसके बाद जाके वो चीज़ इंसानियत को नफ़ा देती है। मुझे इन सारी बातों को पढ़ते और पढ़ाते वक्त तो यही याद आ रहा है कि वम ममा यन फोन ना सुफयम कुस, जो लोगों को नफ़ा देगा वही बचेगा। इतनी मुश्किल बातों के बाद कुछ स्पिरिचुअल बातें कर लेते हैं। आप देखिए कि आज हमारी माएँ या आज के दौर की माएँ क्या अपने बच्चों को इस तरह इल्मे हदीस के लिए मुख्तस करना सोच भी सकती हैं? आज वो लोग जो जाके दुनिया के यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आटे में नमक के बराबर है, और वहां भी दो चार साल, छह साल, आठ साल, दैट्स इट, और वहां जाने से पहले भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। आज शौक कम हो गया। मैं ये सोचती हूँ कि अगर ये हदीस और इस इल्म को आम ना किया गया तो आने वाले दौर में क्या होगा? कुरान की भी हिफाजत का अल्लाह ने जिम्मा लिया है, हदीस की भी हिफाजत है। यहाँ छोटी सी और बात भी समझ लीजिए कि जब लोगों ने हदीस के इल्म को प्ल्यूट करना चाहा, जिसको शुरू में मैंने जिक्र किया फितना इनकार हदीस में, अल्लाह ताला ने हर 100 साल में यानी आफ्टर 100 ईयर्स एक मुजद्दद को भेजा जिसने दीन की तजदीद की। कैसे, थोड़ा सा समझा देती हूँ, ये भी बात आपकी दिलचस्पी की होगी, आज के दौर पे बात करेंगे। अब देखिए कि आज आपको कोई भी हदीसें जो बहुत शुरू से सुनी थी, लेकिन जब आप कुरान की क्लासेस में आते हैं तो आपको बताया जाता है ये हदीस ज़ईफ है, हाँ ये ऐसे है, ये इसमें कमी है, आप सोच में पड़ जाते हैं भाई हम तो बचपन से सुनते आए सूरह वाकिया इसलिए पढ़ो, सूरह यासीन इसलिए पढ़ो, इससे ये होता है, सूरह वाकिया से रिस्क में कमी नहीं होती। अब ये ज़ईफ़ और ये बातिल की बातें कहाँ से आ जाती हैं? तो समझिएगा, पीछे हिस्ट्री की थोड़ी सी सेशन जो दिया था हदीस की, उसमें बता दिया गया था कि लोगों ने हदीसों में अपनी मर्जी से कुछ हदीसें वज़ा करके डाली, लेकिन अल्लाह ने आज के दौर में एक बंदे को चुना जिनका नाम नासिरुद्दीन अल्बानी है, अल्लाह ताला उन पे अपनी रहमतें करे। तकरीबन 10 से 15 साल के बीच में इनका इंतकाल हुए, गुजर चुका है, मुझे इनकी वफात याद है, और मैंने पहले भी शायद कहीं जिक्र किया था कि जब मैं पढ़ रही थी, जो मेरे अपने स्टडीज का दौर था, उस दौर में ये हयात थे अभी, और इनका के जिक्र इतना ज़्यादा मदरसों और दीनी इदारों में होता है कि जैसे कोई फिल्मों का रसिया हो तो किसी गुलकार या अदाकार का नाम लिया जाता होगा, और उतने में हमें पता चला कि इनका इंतकाल हुआ है। एक वहाँ जहाँ हम रहते थे वहाँ हमारी एक और फैमिली भी थी, हम ख्याल हम काफ़ी ज़्यादा इल्मी सफ़र में और इन चीज़ों में साथ थे, रोते हुए यानी मैंने देखा है कि एक दूसरे को मिलते हुए कि आपने कोई खबर सुनी, जैसे कोई अपने किसी अपने प्यारे की मौत की खबर देता ना, इस तरह इनकी वफात की खबर ली दी, ऐसे लग रहा था जैसे खानदान का कोई बुजुर्ग चला गया। हमारी नज़र में ये इतनी मारूफ शख्सियत थी, अखबार का इतना कोई शौक नहीं रहा कभी भी पढ़ने का, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि अगले दिन मैंने इस शौक से कि इतनी बड़ी शख्सियत का इंतकाल हुआ तो देखें कि अखबार में उनके बारे में क्या कहा है, क्योंकि अमूमन आपने देखा है कि जब कोई मशहूर बंदा फौत होता है तो फिर उसकी खबरें छपती हैं और आर्टिकल्स और बुलेटिन। हैरत की बात है कि पूरा अखबार छान मारा, बड़े सफ़े पे मेन पे कोई हेडिंग कोई हाईलाइट नहीं। फिर ख्याल आता है कि शायद खबर गलत है। उस दौर में इतनी मीडिया की तेजियां नहीं थी जो आज हो गई हैं कि चप पलक झपकते में आपको हर तरफ से टेक्स्ट ही आने लग जाए। यकीन कीजिए, छोटी सी खबर अखबार के एक अंदर के सफ़े में कि जिसमें मशहूर आलम दीन नासरुद्दीन अल्बानी का इंतकाल हो गया, इतनी छोटी थी कि मैं सोचती हूँ कि क्या उनकी वफात की ज्यादा तकलीफ महसूस की दिल ने, या इस बेतनाई की खब तकलीफ ज्यादा दिल ने महसूस की। ये हालात थे। लेकिन जो बात कहने लगी हूँ कि अल्लाह ने इस सदी में इनको चुना, जिंदगी रही मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह जब भी चाहे पूरी करा लेगा, कि मैंने इनकी किताब भी पढ़ानी है आपको, अहादीस ज़ईफ़ा और अहादीस सहीहा। इन्होंने यूं छांट के रख दी वो सारी हदीसें जो आज के दौर में आम थी, जुबान ज़दे आम, एक एक को चेक किया, दूध का दूध पानी का पानी अलग कर दिया। ये अल्लाह की सुन्नत है, कुरान की तरह अल्लाह हदीस की हिफाजत भी करता है। और अब ये कहा जा सकता है कि पूरे का पूरा इल्म महफूज कर दिया गया, तो ऑथेंटिसिटी आज के दौर का मारूफ स्लोगन है। जब तक किसी चीज के इंग्रेडिएंट्स का शक यकीन ना हो, मुंह में नहीं डालते, तो क्या इल्म ऐसे ही ले लेंगे? तो बस ये सारे जज्बे दिल में रखते हुए इंशाल्लाह हम अब अगली नशिस्त में सही बुखारी का पहला टॉपिक शुरू करेंगे। चंद मिनट अगर इजाजत दें तो मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूं, क्योंकि अभी मुझे ये शक है कि काफी सारे लोगों के पास किताब भी नहीं होगी। जितनी जल्दी किताब का ऑर्डर देंगे उतनी जल्दी बुक्स आपको मिलेंगी, ठीक है? और ये वो टॉपिक है जो किताब के बगैर आप पढ़ नहीं सकेंगे। ये जो बुक हम पढ़ेंगे ना, इसके अंदर इसकी सबसे पहली बात है कि इसकी दो जिल्दें हैं, यानी 7 या 9 जिल्दों से घटकर ये 2 जिल्दों में आ गई। पहले हम इंशाल्लाह जिल्द अव्वल पे ही रहेंगे। मैं टॉपिक बोलना चाहूंगी क्योंकि ये भी एक याददाश्त होती है, और इससे फायदा ये होता है कि फिर हम कोई चीज ढूंढना चाहते हैं तो हमें वो आसानी से मिलती है। और ये जो इतना हिस्सा है इसको हम अपने मेन पेज पे भी डाल देंगे, ताकि पूरा सुनने या ढूंढने की बजाय पहले से अंदाजा हो जाए कि ये टॉपिक कहाँ पे है। तो किताब के अंदर जो तरतीब होगी उसमें सबसे पहला टॉपिक होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आगाज़े वही का बयान। इमाम बुखारी की असल किताब में भी यही टॉपिक था, यहाँ भी ये है। फिर दूसरा टॉपिक है किताबुल ईमान, ईमान से मुतल्लिक अहादीस को इसमें जमा किया गया। फिर तीसरा टॉपिक हमारा होगा किताबुल इल्म, इल्म का बयान। फिर उसके बाद वुजू का बयान, वुजू करना कराना, उसके बारे में जो भी अहादीस थी वो सारी इसमें आ जाएंगी। फिर उसके बाद अगला है गुसल का बयान, यानी नहाने का और गुसल का बयान है। फिर अगला टॉपिक हमारा होगा हैज का बयान, फिर तयम्मुम का बयान, फिर नमाज का बयान। कुछ टॉपिक्स हमारे एक से ज्यादा नशिस्तों पे चलेंगे, कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक पूरा का पूरा हम कवर करें एक ही नशिस्त में। अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक होगा नमाज के औकात का बयान। अब यहीं से सोचें कि आप अहादीस की रोशनी में जब ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे तो आपका इल्म कितना निखर जाएगा। कुरान सुनते वक्त तो तफसीर पे ज्यादा जोर होता है ना, लेकिन हदीस पढ़ते हुए अमल पे ज्यादा जोर होता है, उसमें से फिकही बातों को हम पढ़ेंगे, यानी आप कह सकते हैं कि अब हम फिक पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है अजान का बयान, उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। फिर जुमे का बयान, नमाज खौफ का बयान, फिर अगला टॉपिक होगा ईदैन का बयान, फिर वितर का बयान, फिर बारिश तलब करने का बयान, और फिर ग्रहण का बयान, फिर सजदा तिलावत का तरीका, सजदा तिलावत और उसका तरीका, फिर नमाज कसर का बयान, फिर तहज्जुद का बयान होगा, फिर मक्का और मदीना की मसाजिद में नमाज पढ़ना, फिर अगला टॉपिक है नमाज में कोई काम करने का बयान, यानी क्या हम नमाज के दौरान कोई काम कर सकते हैं, फिर सजदा सहव का बयान, और फिर जनाजे का बयान, और फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा जकात का टॉपिक। जकात के बारे में बहुत सारी चीजें आपको इंशाल्लाह अहदीस पढ़ते हुए वाजे होंगी, फिर सदका फितर का बयान, और उसके बाद फिर हज का बयान, फिर उम्रे का बयान, हज और उम्रे से रोके जाना, यानी नियत तो की थी लेकिन जा नहीं सके, रुक गए रास्ते में, अब क्या करें। फिर शिकार और उसी से मुतलका जो अफाल है उसकी बात होगी। फिर फजाइल मदीना, मदीना शहर के क्या फजाइल हैं। फिर रोज़े का बयान, नमाज तरावी का बयान, एतिकाफ का बयान, खरीदो फरोख, यानी ये बहुत अहम होगा, जिसको आप कह सकते हैं कि लेन देन के मामला, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह। फिर सलम का बयान, ये एक तिजारत ही की किस्में, शफा का बयान, इजारा का बयान, ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं बिजनेस से और कारोबार से रेलिवेंट। हवालों का बयान, वकालत का बयान, काश्तकारी और बटाई का बयान। फिर मसाकात का बयान, फिर कर्ज लेना और कर्जा अदा करना, तसर्रुफ से रोकना और दिवालिया करार देना, यानी बैंकरप्सी कब फाइल की जाती है। फिर झगड़ों का बयान, फिर गिरी पड़ी चीज को उठाने का बयान, लुक्ता। फिर उसके बाद अगला टॉपिक होगा हुकूक का। फिर शराकत का बयान और फिर गिरवी रखना, प्लेजिंग। क्या आप रहते हैं अपनी जगह पे तो प्लेज करना पड़े तो क्या करेंगे। फिर गुलाम आजाद करने का बयान, हिबा की फजीलत, कि क्या हम कोई अपनी चीज अपनी जिंदगी में हिबा कर सकते हैं किसी को। फिर गवाही का बयान और फिर शुरूत का बयान और फिर वसीयतों का बयान। ये सिर्फ आपको मैंने पहली किताब की तरतीब बताई है, तो आप सोच सकते हैं कि एक समंदर है, जब आप ये सब कुछ पढ़ चुके होंगे और इसको साथ लेंगे तो कितना आपको फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में थोड़ा सा इस किताब को पढ़ने का तरीका बताकर हम बराह रास्त पहला टॉपिक शुरू करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे वक्त में बरकत दे, फहम खोल दे, और साथ ही साथ ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इमाम बुखारी रहमहुल्ला की उस दुआ का हकदार बना दे जो उन्होंने इस किताब को पढ़ने के लिए की थी। अल्लाह ताला को जमाना नहीं चाहिए, लेकिन आप कोई अपना मसला, कोई बीमारी, कोई तकलीफ जहन में रख के दुआ करनी शुरू कर दें कि अल्लाह मैं इस हदीस को इसलिए पढ़ रही हूँ कि मेरी ये दुआ कबूल हो जाए। कोई भी मांग लें, सेहत मांग लें, औलाद मांग लें, सुकून मांग लें, रिस्क हलाल मांग लें, हराम से निकलना मांग लें, और अल्लाह पे कुछ मुश्किल नहीं कि वो हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। मैं तो यही दुआ करूंगी कि रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन नार। रब इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हबलना मिन अज़्वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता युनिम व जअलना लिल मुत्तकीन इमामा। रब्बना ला तुज़िग़ कुलूबना बादा इज़ हदैतना व हबलना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। اللهم إني أسألك ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا في الدين اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم ألهمني رشدي وعزني من شر نفسي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين